खुदावन के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। तू मेरा जीवन है, तू मेरी चट्टान, तू मेरे छुपने की जगह है, तू मेरा है मोहकम मकान। खुदावन के कलाम में खुदा का बंदा दाऊद नबी बार 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 इस बात को, इस सच को दोहराता है कि तू ही मेरे छुपने की जगह, तू ही मेरा मोहकम किला, तू ही मेरे छुपने की जगह है। तो आए हम चंद लम्हों के लिए उस खुदावन को पुकारें, ताकि आज उन तमाम बातों पर, उन तमाम सच्चाइयों पर जो खुदावन खुदा अपने कलाम में हमें सिखाना चाहता है गौर करें, ताकि कोई भी बात हमको बेफायदा हमारी जिंदगियों में बेफल ना रखे। आए हम सब दुआ करें। कादर मुतलिक खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की सुबह के लिए, तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। लश्करों के रब, इस नूर में खुदा खुदा, इस नूर की रोशनी में जो तेरा कलाम हम सब की रहनुमाई के लिए पाकरू के वसीला से देता है, हम सबको चलने की कुव्वत और ताकत दे। सारा जलाल तेरे बेटे यसु मसीह नासरी के नाम को मिले, और आज हम सब कम होते जाएं और मसीह की सोच, मसीह का प्यार, मसीह की खुदा खुदा वो ताजगी और दलेरी हम सब में बढ़ती जाए, और वही यसु नाम इज्जत और जलाल पाए। उसी के पाक और जलाली नाम में खुदा बाप ये दुआ मांगते हैं, आमीन। नए अहदनामा में से इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पांच बाप उसकी छठी आयत, वहां से हम सीख रहे हैं कि कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाजल होता है। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, दूसरे लफ्जों में यानी कि कोई तुमको खाली बेमायनी अल्फाजों से, रीति रीतों और रिवाजों से गुमराह ना करे। हम इस जमीन पर आरजी शहरी हैं, हम ईमानदार इस जमीन पर क्या हैं, आरजी शहरी हैं। इस दुनिया में रहते हुए पालूस रसूल क्रंथस की कलीसिया को कहता है कि तुम दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के ना बनो, तुम दुनिया के रहो लेकिन दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के ना बनो। और फिर पालूस रसूल ये भी कहता है कि तुम यीशु मसीह के हम शक्ल बनो, ना कि इस दुनिया के। फिर पालूस रसूल कहता है, जैसे मैं मसीह की मानद बना हूं, तुम मेरी मानद बनो। पालूस रसूल का यही गोल है, पालूस रसूल का यही मकसद है कि मसीह की मानद, मसीह के नक्शे कदम पर चलने वाले बने। इसलिए कल हमने देखा था खरूज 20 बाप उसकी 3 और 4 आयत को, कि अपनी जिंदगियों में जांचें कि हमने कोई बेफायदा बात अपनी जिंदगी में तो नहीं बनाई हुई, हमारी जिंदगी में कोई ऐसी बात, ऐसा काम, ऐसी रस्म तो नहीं जो बाइबल मुकद्दस में हमें नहीं मिलती और हमने अपनाई हुई है। जैसे हमने देखा था फरीसियों ने खुदावन खुदा के 10 हुक्मों को लिया और 610 हुक्म बना दिए। जब हम यूनानी जुबान में नए अहदनामे को देखते हैं, पुराने नामों में हमें 10 हुक्म दिए गए हैं, जो कहा गया था तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तू किसी माबूद की आबे ना झुकना, तू और तेरा घराना मेरे हजूर झुके, झूठ ना बोलना, जना ना करना, चोरी ना करना, फरेब ना देना, कत्ल ना करना, झूठी गवाही ना देना, वगैरह वगैरह। उसके अलावा नए अहदनामा में हमें 100 से ज्यादा हुक्म मिलते हैं, 100 से ज्यादा हुक्म मिलते हैं। वो वाजह तौर पर नहीं कहा गया कि ये मेरा हुक्म है, कहीं जगह पर वाजह मिलता है। मिसाल के तौर पर मेरे साथ देखें यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब, वहां पर हमें वाजह तौर पर खुदा यीशु मसीह हुक्म देते हुए नजर आते हैं। जब हम जुबान का मुतालिया करते हैं तो जुबानदारी में हमें पता चलता है कि ये हुक्म है या सलाह है या सिर्फ एक बयान दिया गया है। यहाँ पर किसी को नसीहत की गई है। यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाप उसकी हम 34वीं आयत से देखेंगे, 34वीं और 35वीं आयत। इन बातों से फायदा है, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। यहां पर खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर यीशु मसीह ये भी ना कहता कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, बल्कि ये कह देता कि मैं कहता हूं एक दूसरे से मोहब्बत रखो, तो क्या है ये हुक्म है? जब आप अपने घर में, खावंद अपनी बीवी को कहता है कि आज सब्जी में गोश्त पकाना है, तो ये एक हुक्मियाना रवैया है कि मेरी बीवी, आज मैं चाहता हूं कि गोश्त पकाया जाए, तो ये कैसा रवैया है? हुक्मियाना। और एक तरीके से यूं कहा जा सकता है कि मेरी प्यारी बीवी, मैं आज चाहता हूं, मेरे दिल की ख्वाहिश है कि गोश्त बनाया जाए, तो ये क्या हो गई? ख्वाहिश हो गई कि ये मेरी ख्वाहिश है। और यहां बीवी कहती है खावन से, मुन्ने के अबू, मेरा ये सोचना है कि हम घर में ये रंग कर लें, तो ये क्या है? एक सलाह है। क्या है? एक सलाह है। और एक और तरीके से, काशुदे अबू, मैं चाहती हूं कि हम आज क्या बनाएं? खीर बनाएं। तो क्या हुआ? ये क्या है? ख्वाहिश है। ये सारी बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मिलती हुई हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह यहां पर कहता है, यीशु मसीह ये नहीं कहता मैं तुम्हारी मेहनत करता हूं, या मेरी ख्वाहिश है, या मैं चाहता हूं। क्या कहा गया है? मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, एक दूसरे से क्या रखो? मोहब्बत रखो। आगे अमल करना किस पर है? हम पर है। क्या लिखा है? एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जब एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे, तो आगे हमें उसका नतीजा मिलता है। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे, अगर का लफ्ज यूनानी जबान में हमें चार मुख्तलिफ हालतों में मिलता है, चार मुख्तलिफ हालतों में। अगर ये सच है कि तुम मोहब्बत रखोगे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? लोग जानेंगे। पहली बात, अगर हो सकता है तो तुम इस पर अमल करोगे। जैसे आज मैं कह देता हूं कि अगर आप जाकर आज यीशु मसीह के कलाम में से इस आयत को याद करेंगे, तो आपको बरकत मिलेगी। मैंने इस रवैये में कहा है यूनानी जबान के ये सच और दुरुस्त है कि अगर आप उसके वादे को कहेंगे कि खुदा तूने कहा है कि तू यहोवा यरी है मुहैया करेगा, तो अगर आप इस बात पर यकीन करते हैं, तो वो अगर क्या है? पहली हालत कि बिल्कुल दुरुस्त है, खुदा मुहैया कर सकता है। लेकिन आप उसे ले सकते हैं अगर खुदा ना करे, ये दूसरी हालत है, अगर खुदा ना करे। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। इसलिए आए, बहुत दफा जब मसीहियों में फौतगी होती है, जब कोई जमीन को छोड़कर चला जाता है, तो बहुत दफा क्या कहते हैं कि शक और शुबा की बात पाई जाती है कि वो कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ, उसका क्या बनेगा। और फिर बहुत दफा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कलीसिया तो कलाम सुनती है, लेकिन बहुत दफा कलाम सुनाने वाले उसमें नोक झोंक कर जाते हैं। इसलिए मैं पादरी सहबान की तरफ, खुदा के खादमों की तरफ इशारा कर रहा हूं कि बहुत दफा खुदा के खादम अपने खुदा के कलाम को सही तौर पर बयान नहीं करते, बल्कि बेफायदा बातों की तरफ ले जाकर क्या करते हैं? कलीसिया को, इंसानों को गुमराह करते हैं। आए एक वाक्या देखें, ये वाक्या हम हर दफा पढ़ते हैं। लुका की इंजील उसका 16वां बाप उसकी 19वीं आयत से 31वीं आयत तक आपको अमीर और गरीब लाजर का जिक्र मिलता है। अमीर मर गया और वो अजाब में गया, गरीब मर गया और इब्राहिम की गोद में गया। इस हवाले की सही क्या करते हैं, तफसील या सही वंड नहीं निकालते। यहां पर सबसे पहली बात, हमें दौर को और वक्त को देखने की जरूरत है। बात कौन कर रहा है? यीशु मसीह। कौन बात कर रहा था? यीशु मसीह। ये बातें किसने कही है? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह अभी जिंदा था और यीशु मसीह ये वाकया बयान कर रहे हैं कि एक दौलतमंद था जो अगवानी और महीम कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शादमान और खुश होता और शादमानी से शौकत के साथ रहता था, बड़े अच्छे तरीके से, जिसे कह सकते हैं कि आज के दौर में जिसके 25 मरबे हों, जिसको किसी किस्म की कोई फकर फिक्र ना हो, किसी चीज की फिक्र नहीं, खुशी से खाना पीना और जो बढ़ जाना उसे नौकरों ने ले जाना। और लाजर नाम एक गरीब आदमी नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था और उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों में से अपने गिरते गिरे हुए टुकड़ों में से अपना पेट भरे और खाए। कुत्ते भी आकर उसका उसके नासूर चाटते थे, उसके जख्म चाटते थे। तो क्या हुआ? अमीर मर गया। लंबी कहानी मुख्तसर, बहुत दफा जब फौतगी होती है तो खुदा के खादम इस हवाले को बयान करते हैं जी, अगर कोई बंदा दौलतमंद होगा तो वो अजाब में जाएगा और अगर कोई गरीब है तो वो इब्राहिम की गोद में जाएगा। यहां पर ये बात नहीं हो रही, बात यहां पर ना दौलत की हो रही है ना गरीब होने की हो रही है, बात यहां पर हो रही है उस यहूदी सोच की। जब यीशु मसीह अभी तक निजात का काम जिसने मुकम्मल नहीं किया था, यहूदी सोच के मुताबिक जितने यहूदी मरते थे इब्राहिम की गोद को क्या समझा जाता था? आराम की जगह, सुकून की जगह, कि इब्राहिम की गोद में सुकून की जगह है और ईमानदार सब वहां पर जाते हैं। तो जब ये वाकया यीशु मसीह ने बयान किया कि अमीर आदमी अजाब में गया, अजाब कहां पर है? आसमान पर नहीं, जमीन के नीचे। इस हवाले के मुताबिक जब हम 23वीं आयत को पढ़ते हैं, उसने किसने? अमीर आदमी ने, जब वो मुआ दफन हुआ उसने आलम रवा के दरमियान गजब में मुबतला होकर अपनी आंखें खोली। गजब में मुबतला होकर पत्रस को खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अब से कलीसिया पर आलम रवा के दरवाजे बंद ना होंगे। ये कब हुआ? जब यीशु मसीह अभी मसलूब होने so, आलम रवा कहां है? जमीन के नीचे, जिसे दोजक भी कहा जाता है, जिसे अबेस यानी के पाताल भी कहा गया है, वो जगह जहां पर क्या कहते हैं कि कैद फरिश्तों को कैद किया गया है जो नाफरमान फरिश्ते थे, वो जगह जहां पर फरिश्तों को कैदी बनाकर रखा हुआ है। So, तमाम गैर ईमानदार यहूदी सोच के मुताबिक कहां पर जाते थे? जमीन के नीचे। आज भी मसीही ईमान के मुताबिक जो यीशु पर ईमान नहीं लाता वो कहां पर जाता है? आलमे रवा में। आलमे रवा दोजख की, पाताल की, या जिसे कहते हैं कि जमीन के नीचे, वो जगह जो आग से और ऐसी तैयार की गई है खुदा की कुदरत से, जहां पर रूहों को कैद किया जाता है। सो अमीर आदमी वहां पर गया और गरीब आदमी लाजर की गोद में। सो आलमे रवा और इब्राहिम की गोद दोनों क्या थी उस वक्त के मुताबिक, इस हवाला के मुताबिक? नीचे। क्योंकि यहां पर लिखा है कि कोई जमीन के नीचे से आसमान तक देख नहीं सकता। क्या लिखा है? कि आलमे रवा के दरमियान गजब में मुबतला होकर आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से उसकी गोद में, दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। सो ये कहां का वाकया है? आसमान का या जमीन का? जमीन का, क्योंकि इब्राहिम की गोद सुकून की जगह कही गई है बा मुताबिक पुराने अहनामा के। जितने ईमानदार वो सब क्या करते थे, वो भी जमीन के नीचे जाते थे, लेकिन अजाब में नहीं। कहां पर? सुकून की जगह, सुकून की जगह। तो उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और इब्राहिम से दौलतमंद आदमी ने हुक्म नहीं दिया, क्या नहीं दिया? हुक्म नहीं दिया, बल्कि गुजारिश की कि मैं प्यासा हूं, लाजर को भेज के मेरी उंगली का, अपनी उंगली का पोटा, अपनी उंगली को भिगो कर मेरे मुंह में डाले। और इब्राहिम ने क्या उससे बात कही है? इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहां पर तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। अच्छी चीजें बुरी चीजों से हरगिज मुराद नहीं कि जो कोई दौलतमंद है वो बाद में सड़ेगा। यहां पर बात हो रही है ईमान की, ईमान की, यहूदी उस नजरिए की जो यीशु मसीह बहुत बेहतर तरीके से जानता था। तो यीशु मसीह उनको ये बात सिखा रहा है अपने सलीब से, सलीब पर मसलूब होने से पहले। तो लंबी कहानी मुख्तसर, जितने पुराने अहदनामे के लोग यीशु मसीह में मर गए, खुदा पर यकीन रखते थे, वो सब, हमें से हमें कुछ लोगों का जिक्र मिलता है, हनोक का कि वो आसमान पर उठाया गया, एलिया नबी का कि वो आसमान पर उठाया गया, लेकिन बाकी हमें यहां पर जिक्र मिलता है कि वो सब कहां पर थे? जमीन के नीचे। लेकिन जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो क्या हुआ? मेरे साथ देखें मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब, 27वां बाब उसकी 52 आयत। ये वो दूसरा वाक्या है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने उन तमाम ईमानदारों की रूहों को जो पाताल में थी, कैदियों को जाकर खुशखबरी सुनाई और उनको आलमे बाला पर ले गया। मेरे साथ देखें मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब उसकी 50 आयत। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चलाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। ये नागवारा बात थी कि मकदस का पर्दा फट जाए। मकदस का पर्दा बा मुताबक पुराने हैनामा के और तारीख के मुताबिक कम से कम इतना मोटा था, किरमिजी रंग का पर्दा इतना मोटा था, और कहा जाता है कि अगर 3 बैल इस तरफ 3 बैल इस तरफ लगाकर उनको खींचा, उस दोनों तरफ से खींचा जाए तो वो पर्दा फट नहीं सकता था। सो जब यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से चुलाकर अपनी जान दे दी तो मकदस का पर्दा बीच में से फट गया। जो पर्दा बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के बदन को जाहिर करता है कि उसके वसीला से हमें बाप तक रसाई हुई, उस पर्दे के पीछे काहिन के सिवा और कोई जा नहीं सकता था, लेकिन पर्दा फटा तो हर एक के लिए, हर एक कौम के लिए, जिसके बारे में पतरस को परेशानी हुई कि मैं किस तरह इन नापाक जानवरों को खाऊं, वो इसी तरफ इशारा था कि नापाक को मैंने पाक ठहराया है, जो कोई यीशु पर ईमान लाएगा वो पाक किया जाएगा। तो जब हैकल का पर्दा फट गया तो हर एक के लिए क्या खुला? रास्ता खुला। और जमीन लरजाई और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुली। क्या लिखा है? कब्रें खुली और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे, जिनकी रूहें मसीह में आराम कर रही थी, सो गई थी, वो तमाम मुकद्दसीन जो सो गए वो उठे। और क्या हुआ? और उसके जी उठने और कब्रें खुली और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो जी उठे थे। मुकद्दसों से मुराद वो हर ईमानदार, काहिन के भाई से लेकर तमाम ईमानदार जो यीशु मसीह का इंतजार करते हुए मर गए, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बथेरों को दिखाई दिए। ये वो दूसरा वाक्या है कि किस तरह लोग आलमे रवा से निकलकर आसमान पर गए। मेरे साथ एक और हवाला देखें, इफिसियों 4 बाब उसकी 11 आयत। इफिसियों 4 बाब उसकी 11 आयत, जब हम आयत बा आयत मतालिया करते हैं तो हमें इन सारे जोड़ों की समझ आती है। इसलिए 4 बाप उसकी 8 आयत से पढ़ेंगे। इसी वास्ते वो फरमाता है कि कौन खुदावन खुदा यीशु मसीह के बारे में, कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को अनाम दिए। आलमे बाला पर कौन चढ़ा? यीशु मसीह। और यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी गालबन 14 और 15 आयत में लिखा है कि इब्ने आदम के सिवा कोई आसमान पर नहीं गया और उसके सिवा कोई आसमान से नीचे नहीं आया। हम सब पैदा होते हैं, हम आसमान से घिरे नहीं, हम सब पैदा होते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह डायरेक्ट आसमान से नीचे आया, यानी कि पैदाइश के वसीला से, लेकिन वो आसमानी है, कोई जिस्मानी आसमान से आ नहीं सकता। और क्या लिखा है? उसके चढ़ने से और उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के अलाता में उतरा भी था। यीशु मसीह आलमे रवा में गया और वहां पर जाकर मनादी की और कैदियों को क्या दी? रहाई दी। अब सीखने की बात ये है, एक और हवाला मेरे साथ देख सकते हैं आप। हम इस टॉपिक पर कम से कम 2 महीने सीख सकते हैं कि यीशु मसीह के सलीब पर जान देने से 40 दिन तक नजर आने तक 2 महीने से ज्यादा सीख सकते हैं। पत्रस का खत, वक्त थोड़ा है। अच्छा जी, आए कल इस पर गौर करेंगे, हमारे पास वक्त कम है, इस बात पर गौर करें कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। आज ईमानदार, आज अगर मैं मर जाऊं तो मैं इब्राहिम की जो गोद पहले के जमीन के नीचे होती थी वहां पर नहीं जाऊंगा। अब इब्राहिम की गोद कहां पर चले गई है? आसमान पर, आलमे रवा से निकल कर आलमे बाला पर। इसलिए इस बात में कंफ्यूज या कहते हैं परेशान ना हो, क्योंकि ये हवाला बहुत ज्यादा फौतगी पर पढ़ा जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से उस रवाज, उस वक्त, उसकी सोच के मुताबिक बयान नहीं किया जाता, बल्कि बहुत दफा कह दिया जाता है कि अगर हमारे पास अच्छी चीजें हैं जी तो उनको दूसरों तक दें, तब ही हमारी क्या है? निजात है। अगर हम गरीब हैं तो हमें आसमान पर खजाना मिलेगा। बाइबल मुकद्दस में यहाँ हमें कोई ऐसा हुक्म नहीं मिलता कि अमीर है तो वो निजात नहीं पाएगा और गरीब है तो निजात पाएगा। खुदा तरफदार नहीं है, ना अमीर का ना गरीब का, वो उसका तरफदार है, वो उसके साथ सुलह रखता है जिनसे वो राजी है, और राजी वो किन से होता है? जो उसके बेटे के दावतनामा को कबूल करते हैं। सादा के तौर पर आप अपने घर में दावत रखते हैं और सारे मोहल्ले को बुलाते हैं और उसमें से एक बंदा आएगा तो किससे राजी होंगे? एक बंदे से या सारे मोहल्ले से? एक मोहल्ले, एक बंदे से, क्योंकि आपने 100 बंदे का इंतजाम किया है, एक बंदा आया है खाना खाने के लिए, 99 बंदों के खाने का नुकसान होगा तो आप क्या करेंगे? नाराज। और हो सकता है इंसान होते हुए कहें ओदी भैन नू, ओदी मां नू, ओदी चाची नू, ओदी फूफी नू। सो रूहानी मतलब आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और उन आदमियों से जिनसे खुदा राजी है सुलह। सुलह का मतलब है जुदाई को दूर करना, और जब पर्दा फटा तो जुदाई दूर हो गई और हर एक अब खुदा की हजूरी में जाता है। पहला ग्रंथी उसका 15वां बाब के मुताबिक जैसे यीशु मसीह खुदा की हजूरी में गया, वैसे ही हर कोई जो है वो खुदा की हजूरी में जाता है। अब हमें पुराने अहदनामा के मुताबिक मुकदसों की तरह अजाब में इंतजार नहीं करना होगा। जिस्म खाक में जाता है, रूह कहाँ पर जाती है? खुदा के हजूर। नहीं यकीन तो पुराना अहदनामा, नया अहदनामा कहीं भी पढ़कर देख लें। और एक बार और जाने से पहले मैं चाहता हूं कि जो कुछ सुने इसके बारे में सवाल जवाब करें। इसके बारे में पूछें। सवाल जवाब जितने ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको और मुझे सीखने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि हम महीने में एक कलीसियाई रफाकत रखें जिसमें हम सब अपने घरों से कुछ ना कुछ बनाकर लाएं, बाहर हॉल में बैठकर खाना खाया जाए और उस खाने की मेज पर जैसे यीशु मसीह और उसके शागिर्द बैठकर गुफ्तगू करते थे, जैसे यहूदी सोच में बैठकर गुफ्तगू की जाती थी, हम सब अपने खानदानों के साथ, बाप और माँ और जो जवान बालक बच्चे हैं वो बैठकर खुदा के कलाम के बारे में गुफ्तगू करें। एक दिन हो सकता है महीने में, पहले एक बार शुरू करते हैं, महीने में कम से कम एक दिन शाम का खाना मिलकर खाएं और उसमें गुफ्तगू करें। आपके पास जो सवाल है जो बहुत दफा नहीं जवाब मिलता वो पूछें, ये क्या बात है, ये कहाँ से आई है, ये कहाँ से रस्म हमने शुरू की, ताकि आपको पता होगा तो आप दूसरों को बताने वाले बनेंगे, ना कि जैसे पिछले दिनों में भाजी बताई चाची जी, किसी ने पूछा कि जी आप चौधरी के पेंड के चौधरी ने पूछा, वहां के डोगर थे, कि जी आप बड़ा दिन क्यों मनाते हैं, तो वहां पर एक खुदा का बंदा, गिरजे में कम से कम साल में एक दफा जाना तो फिर ऐसा ही होना, आप बड़ा दिन क्यों मनाते हैं, क्योंकि जी दिन एक तेल तेल भार बड़ा हो जाता है, इस कर किसी बड़ा दिन मनाओ, मैं समझ ही नहीं, तेल भर दिन वड्डा हो जाता है इस करके सी दिन वड्डा हो जाता जी दिन वड्डा कह देने, नहीं बड़ा दिन हम इसलिए मनाते हैं कि यीशु मसीह नजात दहिंदा की यादगारी में कि वो पैदा हुआ और उसने खुदा और इंसान के साथ क्या कराया है, सुलह कराई है। इसलिए इन बातों को आपसे पूछेंगे लोग, मैं चाहता हूं कि लोग पूछें, बहुत दफा पूछते हैं कि आपका कलमा क्या है, आए इन तमाम बातों पर गौर करें और सीखें। चाहते हैं कि जी एक शाम का खाना मिलकर खाया जाए, कौन कौन चाहता है, मैं तो चाहता हूं क्योंकि खुदा ने मेरे दिल में डाला है, अगर आप चाहते हैं तो शाम जो कुछ भी बनाना चाहते हैं बनाकर लेकर आएं और हम यहाँ पर बड़े दस्तरखान पर बैठकर खाएंगे और खुदा के कलाम में से गुफ्तगू करेंगे। तीन मजूसी, हाँ जी वो बाद में देखेंगे, आए हम एक बार आज की इबादत को। हाँ जी, इस अमीर आदमी का नाम नहीं बताया गया जी, इस अमीर आदमी के बारे में हमें कुछ भी जिक्र नहीं मिलता, और जब हम तारीख पढ़ते हैं तो हमें तारीख में यही बयान किया गया है कि ये एक अमीर आदमी था जो यीशु मसीह ने उस वक्त की कहानी को बयान किया। मिसाल के तौर पर हकीकी वाक्या को मिसाल के तौर पर बयान किया और ये वाक्या हकीकत में हुआ, क्योंकि यीशु मसीह एक ही वक्त में वो जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, जमीन के इर्द गिर्द हर एक चीज का हिसाब रखता है। तो यीशु मसीह ने वहां पर लोगों की ये बात देखी और उनको ये सच बयान किया, इसलिए आलमे रवा कहाँ पर है, जमीन के नीचे, आलमे बाला कहाँ पर है, जमीन के ऊपर यानी आसमान। इसीलिए पतरस को खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि कलीसिया पर आलमे बाला के दरवाजे, आलमे रवा के दरवाजे गालब नहीं आएंगे, यानी कहने से मुराद यही है कि जब कलीसिया कायम होगी तो उसके बाद कोई भी आलमे रवा में नहीं जाएगा बल्कि आलमे बाला पर जाएगा। हालेलुया। आलमे बाला किसको कहा गया है, आसमान को, जहां पर खुदा की हजूरी उसका तख्त है, जहां पर खुदा के फरिश्ते उसकी तमजीद करते हैं, और आलमे रवा जमीन के नीचे। आए हम दुआ करें, आज 9 मिनट ज्यादा लगे लेकिन मजा आ गया।